ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है आज 5वें अध्याय का डिस्कस के लिए। कल हमने 4था अध्याय कंप्लीट किया था। 4थे अध्याय के अंत में हमने देखा था कि भगवान ने दिव्य ज्ञान के बारे में बताया, और दिव्य ज्ञान के बारे में बताने के बाद भगवान अर्जुन से बताते हैं कि इस दिव्य ज्ञान में स्थिर होके तुम युद्ध करो। तो अर्जुन जब पूरे अध्याय में दिव्य ज्ञान के बारे में सोच सुनते हैं और लास्ट में युद्ध करने के बारे में सुनते हैं, तो अर्जुन उन दोनों को समझ नहीं पाते, क्योंकि भगवान बताते भी हैं कि जितने भी आप सेक्रीफाइसेस करते हैं वो सारे सेक्रीफाइस वास्तविकता में दिव्य ज्ञान में कल्मिनेट होते हैं। पूरे अध्याय में भगवान इस तरह से बता रहे हैं। तो जब भगवान लास्ट में अर्जुन से फाइट करने के लिए बोलते हैं तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है कि फाइट या फिर ज्ञान प्राप्त करना, कर्म करना या ज्ञान प्राप्त करना। तो 5वें अध्याय में अर्जुन ऑलमोस्ट वही प्रश्न करता है जो 30वें अध्याय में किया था। 30वें अध्याय में जो प्रश्न करते हैं वही प्रश्न अर्जुन फिर से 5वें अध्याय में ऑलमोस्ट उसी तरह से पूछते हैं। तो ये इस अध्याय में टोटल 29 श्लोक हैं, और 29 श्लोकों में करीब पांच भागों में उनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान शुरू के 6 श्लोकों में उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो अर्जुन पहले श्लोक में पूछते हैं, अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यस्वेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बता रहे हैं कि पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, कर्म त्यागने के लिए कहते हैं मतलब दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहते हैं, और पुनर्योगम च शंससि, और फिर आप मुझे भक्तिपूर्वक कर्म करने का भी बोलते हैं, युद्ध करने का बोलते हैं। तो क्या आप मुझे क्लियरली बताएंगे, तस यत श्रेय एतयोरेकम, इस बार मुझे एक बार में क्लियर बता दीजिए दोनों में से क्या अच्छा है, एतयोर एकम, इन दोनों में से कौन सा श्रेय है ये मुझे आप एक बार क्लियरली बता दीजिए। तो ये क्लियर प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं कि मुझे कन्फ्यूज आंसर नहीं चाहिए है। आप पहले मुझे संन्यास कर्म को त्यागने के लिए बोलते हैं, उसके बाद आप पुनर्योगम च शंससि, फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने के लिए बोलते हैं या युद्ध में फाइट करने के लिए बोलते हैं, तो मैं इससे कन्फ्यूज हो जाता हूँ। तो कृपा करके तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, इन दोनों में से जो एक श्रेष्ठ हो वो मुझे करने के लिए बताइए। यहाँ से ये प्रश्न प्रारंभ होता है। दूसरे तीसरे और चौथे अध्याय को सुनने के बाद, हालांकि दूसरे अध्याय में भगवान ने बहुत सारी वस्तुएं बताई थी, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति के बारे में भी बताया था, परंतु दूसरे अध्याय में वो इंस्ट्रक्शंस सिनॉप्सिस के जैसे थे, इसलिए अर्जुन उनको पूरा फॉलो नहीं कर पाते हैं और तीसरे में प्रश्न करते हैं। तो तीसरा अध्याय भगवान कर्मयोग के बारे में बताते हैं, फिर चौथे अध्याय में तीसरे अध्याय के लास्ट में दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं, उसी को डिटेल में चौथे अध्याय में बताते हैं, और दिव्य ज्ञान के बाद भगवान बताते हैं इस ज्ञान से युद्ध युक्त होके आप युद्ध करो। तो उसके बाद अर्जुन ये प्रश्न करते हैं कि आप दोनों चीजें क्यों मुझे बता रहे हैं, मुझे बताइए दोनों में से क्या अच्छा है, वो मैं करूंगा। तो भगवान फिर इस प्रश्न के उत्तर में पंचम अध्याय फिर बोलते हैं। पांचवें अध्याय में भगवान बताते हैं, श्री भगवान उवाच दूसरे श्लोक में, संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेय सकराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगाद् विशिष्यते। तो अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि कर्म को त्याग करने में और भक्ति पूर्वक कर्म करने में, या कर्म योग में, कर्म को त्याग करने में और कर्म योग में क्या अच्छा है, तो भगवान उत्तर देते हैं, संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेय सकराबुभौ। दोनों के दोनों ही मुक्ति पथ में ले जाने के लिए सफिशियंट हैं, कर्म का त्याग और कर्म योग दोनों ही उत्तम है मुक्ति के लिए, परंतु तयोस्तु कर्म संन्यासात, इन दोनों में से भी कर्म को त्यागने से भक्ति युक्त कर्म करना ज्यादा अच्छा है। दैट मीन्स दिस, भगवान के उत्तर उसी तरह से हैं, परंतु अर्जुन उसको फॉलो नहीं कर पाए थे, इसलिए भगवान फिर से बता रहे हैं कि कर्म का परित्याग और भक्ति युक्त कर्म दोनों ही उत्तम है, परंतु दोनों में से अगर देखा जाए कौन अच्छा है, तो दोनों में से कर्म के परित्याग से कर्म योग ज्यादा अच्छा है। इस अध्याय के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कर्म योग क्या कहलाता है, कितने प्रकार के कर्म योग होते हैं। तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि कर्म योग ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लोग सामान्यतः इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल हैं, उनको पता नहीं है कि इस संसार में ये जो हमें शरीर मिला हुआ है, ये ऑलरेडी हमें पिछले पापों के कारण मिला है। तो इस संसार में जब हम अभी आए हैं, तो हमें फिर से और पाप करके अगले अगले नए शरीरों की सृष्टि नहीं करना चाहिए। वास्तविकता में हम जितने भी कार्य करते हैं इस जीवन में, तो उन कार्यों के आधार पर हमारा अगला शरीर बनता रहता है। तो भगवान इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म अगर हम करेंगे तो फिर से हमारे अगले अगले जीवन बनते रहेंगे, नए नए जीवन। इसलिए इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को त्याग के कर्म योग करना होगा, मतलब कर्मों के फल को भगवान को समर्पित करना होगा। और वो कर्म योग जो है वो संन्यास से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कर्म योग आसान होता है करने में और सुरक्षित होता है। संन्यास सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि संन्यास में अगर व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाया तो उसका पतन भी हो सकता है। परंतु कर्मयोग सेफ होता है, ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल क्यों होता है? क्योंकि कर्मयोग में व्यक्ति की इंद्रियां हमेशा एंगेज होती हैं, वो एक जगह पे नहीं बैठा होता है। जैसे हम जानते हैं, आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। अगर व्यक्ति खाली रहता है तो उसका मन और उसकी इंद्रियां उसको कभी भी धोखा दे सकते हैं। परंतु कर्म योग में ऐसा नहीं होता है, आपकी इंद्रियां लगी एंगेज रहती हैं और कर्म के फल को हम भगवान को देते रहते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध होता रहता है। तो ये भगवान उत्तर दे रहे हैं कि संन्यास और कर्म योग में से कर्म योग ज्यादा अच्छा है, और जो व्यक्ति ना तो कर्म फलों से घृणा करता है ना कर्म फल की इच्छा करता है। तीसरे श्लोक में बताते हैं कि सामान्यतः व्यक्ति को कर्म फल से घृणा भी नहीं करना चाहिए कि कर्मों का फल मुझे क्यों मिल रहा है, और कर्म फल की इच्छा भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह से सोचता है वो सन्यासी कहलाता है, नित्य सन्यासी कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति जो कि कोई भी इच्छा और द्वेष से मुक्त होता है, इसलिए वो संसार के भव बंधन को पार करके सुखम बंधात्व मुच्यते, परम सुख को प्राप्त करता है। और केवल पृथक बाला, केवल अज्ञान में जो छोटे लोग हैं, जो जो नहीं जानते हैं कि ज्ञान क्या है, अज्ञानी लोग हैं। बाला, बाला मतलब छोटे बच्चे के समान जिनका ज्ञान है, जो ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि कर्म योग और सांख्य अलग अलग है। वास्तविकता में कर्म योग और सांख्य को अगर हम देखें तो दोनों सेम ही है, दोनों से रिजल्ट समान मिलता है। सांख्य योग मतलब भौतिक तत्वों को कैटेगराइज करना, और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं भौतिक तत्वों में सभी ऑब्जेक्टिव हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में आत्मा और भगवान को स्थापित करना, वो सांख्य योग कहलाता है। और भक्ति योग कर्म योग भी वही है, उस भगवान को अपने कर्मों के फल का भोक्ता बनाना। तो भगवान बता रहे हैं कि जो कम जानने वाले हैं वो केवल कर्म योग और सांख्य योग को अलग अलग मानते हैं, जो ज्ञानी है वो जानते हैं कि दोनों में से किसी को का भी अनुसरण करते हैं तो दोनों का फल प्राप्त होता है। सांख्य योग का एक सेंस इसमें बता रहे हैं कि जब व्यक्ति संसार का एनालिसिस करके संसार को त्याग करता है, अध्यात्म को ग्रहण करता है, उसको सांख्य योग बोला जा सकता है। तो कर्मयोग और सांख्य योग वास्तविकता में एक ही है, उसमें से कोई भी एक मार्ग का जो व्यक्ति अनुसरण करता है वो दोनों के फल को प्राप्त करता है। सांख्य के द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति के द्वारा भी प्राप्त होता है, इसलिए सांख्य योग और भक्ति योग को जो एक समान देखता है वो वस्तुओं को ठीक तरीके से देखता है। सांख्य का मतलब होता है संख्या, भौतिक संसार के अवयवों की संख्या को काउंट करना। फॉर एग्जाम्पल, पांच कर्म इंद्रियाँ होती हैं, पांच ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, पांच इंद्रियों के विषय होते हैं, और पांच हमारे भूमि, जल, वायु, आकाश, अग्नि, पांच ये होते हैं, और तीन होते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। तो टोटल 23 हो जाते हैं। इसमें एक और तत्व अगर मिलाते हैं तो वो तत्व हो जाता है महत्तत्व, इन सभी का एग्रीगेट। तो 24 तत्व हो जाते हैं। परंतु ये सारे के सारे 24 तत्व जो हैं ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये संसार एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है, और इसका सब्जेक्ट मैं हूँ, हम हर इंडिविजुअल व्यक्ति है। तो हमारे लिए संसार केवल तब तक है जब तक हम इस संसार को देख पा रहे हैं। तो जो हम भगवद गीता में बार बार पढ़ते हैं, मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट, अव्यक्त और अव्यक्त होना और व्यक्त होना, ये शब्द ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। कि जैसे मान लो मेरे पास ये घड़ी है, इस घड़ी को जब मैं देख रहा हूँ तो इस घड़ी का मुझे उपयोग है, परंतु अगर मैं ही नहीं रहा, मैं इस संसार में नहीं रहा, तो इस घड़ी का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। तो अभी ये घड़ी मेरे लिए मैनिफेस्ट है, व्यक्त है, और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तब ये घड़ी मेरे लिए अनमैनिफेस्ट, अव्यक्त हो जाएगी। तो इसी तरह से 24 तत्व जो सांख्य में हम देखते हैं वो सभी के सभी ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है। तो देखने वाले को जो हम ऐड करते हैं तो आत्मा को ऐड करते हैं। तो 25वां तत्व आत्मा है, और आत्मा अकेले नहीं होते इस संसार में, परमात्मा होते हैं। तो 26 तत्व। तो इन 26 तत्वों को जब कोई व्यक्ति एनालाइज करता है उसको सांख्य योगी बोला जाता है। और सांख्य के अंत में भी व्यक्ति को भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब वो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को सीखता है तो भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। तो भगवान बता रहे हैं कि सांख्य के द्वारा भक्ति प्राप्त होता है, सांख्य के द्वारा जो स्थान प्राप्त होता है, भक्ति के द्वारा भी वही स्थान प्राप्त होता है। इसलिए सांख्य योग और भक्ति योग दोनों को जो एक समान देखता है, वो व्यक्ति वास्तविकता में वस्तुओं को देखता है। और 6वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेनाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल कर्मों का त्याग करने से कोई सुखी नहीं रहता है। केवल कर्मों का त्याग करने से लोग सुखी नहीं होते। हम देखते भी हैं कि कई लोग अपने घर को त्याग करके सन्यासी बनने चले जाते हैं, और फिर जब वो जंगल जंगल में जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, तो वहीं जाके एक नया घर बसा लेते हैं। वहाँ पे उनको अलग अलग आकर्षण मिलते हैं, सुख मिलता है, इज्जत मिलती है। तो घर से वो कर्मों का त्याग करके जाते हैं, और फिर बाहर जाके फिर संन्यास लेने के बाद फिर से वही कर्म करने लगते हैं। तो भक्ति में जो व्यक्ति नहीं लगता है, अगर वो कर्मों का परित्याग करेगा तो उसको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है, वो ज़्यादा खुश नहीं होता है। परंतु कोई व्यक्ति अगर भक्ति में लगा हुआ है तो शुरू में हो सकता है वो शुद्ध नहीं है, परंतु जैसे जैसे वो प्रयास करता है, चूंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर प्रयास करता है, तो उसका हृदय भी धीरे धीरे शुद्ध होता है, और उस डिटैचमेंट के आधार पर कार्य करते करते धीरे धीरे वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें दो प्रकार के सन्यासियों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मायावादी सन्यासी वेदांत सूत्रों की, शंकराचार्य की कमेंट्री का उपयोग करते हैं, और भागवत सन्यासी पंचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। इसलिए वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक कार्य करने होते हैं। ये कार्य भौतिक नहीं होते हैं, जो भी वो भगवान की भक्ति में कार्य करते हैं वो भौतिक नहीं होते हैं, दिव्य होते हैं। परंतु मायावादी सन्यासी जो होते हैं उनको भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद ही नहीं मिलता है, उनका अध्ययन बहुत कठिन हो जाता है। लगातार बैठ के पढ़ते रहना और संसार को झूठ बोलते रहना, संसार को मिथ्या बोलना, इस प्रकार से करते करते कई बार वो ऊब जाते हैं और भौतिक कर्मों में फिर से आ जाते हैं। तो सिंपल संन्यास, बिना भक्ति के संन्यास लेना या बिना भक्ति के कर्म का त्याग करना अपने आप में बहुत कठिन प्रोसीजर है, और लोग उसमें, जो उसमें डूब जाते हैं उनके पतन का भी डर होता है। तो ये पहला सेक्शन है, पहले से 6वें श्लोक तक, जब भगवान समझा रहे हैं कि किस प्रकार से कर्म, इसमें भगवान बता रहे हैं कि कर्म योग वास्तविकता में कर्म संन्यास से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हालांकि दोनों का लक्ष्य एक ही है, परंतु तब भी जो व्यक्ति कर्म का वो करता है, जो व्यक्ति कर्म को संन्यास लेता है, कर्म को नहीं करता है, उसकी अपेक्षा ऐसा व्यक्ति अच्छा होता है जो अपने कर्म के आउटपुट को भगवान की सेवा में उपयोग करता है। और इसके बाद जो 7वें श्लोक से लेके अगले 6 श्लोक हैं, उसमें भगवान ऐसे व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं जो कि निष्काम कर्म योगी होता है। अभी इसमें निष्काम कर्मयोगी तथ्य समझना इंपॉर्टेंट है कि निष्काम कर्मयोगी किसको बोलते हैं। सामान्यतः दो प्रकार के योगी दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं निष्काम कर्मयोगी और एक होते हैं सकाम कर्मयोगी। सकाम नाम से ही पता चलता है, सकाम मतलब जिनको काम की काम है, काम मतलब भौतिक इच्छाएं हैं, अभी तक उनकी भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं हुई है और वो कुछ कर्म करते हैं परंतु भौतिक इच्छाएं उनकी खत्म नहीं हुई है, भौतिक भोगों को भोगने की इच्छाएं हैं उनकी परंतु भौतिक भोगों के फल का कुछ हिस्सा भगवान को देने के लिए भी तैयार है, तो ऐसे लोग सकाम कर्म योगी बोला जाता है। ऐसे लोगों को कई बार कर्मी भी बोलते हैं और कई बार ऐसे लोगों को ऐसे भक्त भी बोलते हैं जिनके पास भौतिक इच्छाएं हैं, वो भगवान के पास जाते हैं परंतु उनकी खुद की भौतिक इच्छाओं के कारण वो भगवान के पास जाते हैं, तो सकाम कर्म योगी कहलाते हैं। वो अपने कर्मों को भगवान को समर्पण करते हैं कुछ हिस्से को, परंतु भोगने भौतिक भोग को भोगने की इच्छाएं होती हैं उनकी। और दूसरा होता है निष्काम कर्म योगी। निष्काम कर्म योगी मतलब जिसको अभी कर्म के फल भोगने की इच्छा नहीं है, कर्म के फलों को वो सैक्रिफाइस करता है। साधना भक्त, ऐसे भक्त जो सिंसियरिटी से भक्ति में प्रोग्रेस करने की इच्छा रखते हैं और अपने खुद के सुख को, खुद की भौतिक इच्छाओं को त्याग करने का प्रयास करते हैं, वो निष्काम कर्मयोगी में आते हैं। सेल्फलेस डिवोटी, डिवोटीज विथ नो डिजायर्स फॉर पर्सनल इंटरेस्ट। तो योग की पद्धति में सबसे नीचे का स्तर होता है एनिमल लाइफ, मतलब जो मनुष्य पशु के समान रहते हैं, अनलिमिटेड इंद्रिय भोग करने की इच्छा रखते हैं, अनकंट्रोल्ड इंद्रिय भोग करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, वो सामान्यतः पशुवत जीवन जीते हैं। और इसके ऊपर आते हैं, पशुवत जीवन के ऊपर आता है कर्मकांड। जो लोग वैदिक कर्मकांड की पद्धति को मानते हैं और वैदिक कर्मकांड की पद्धति को मानने के बाद जो वैदिक क्रियाकलापों वैदिक यज्ञों को करते हैं तो वो कर्मकांडी कहलाते हैं। उनका ये अच्छा होता है कि कम से कम वो भगवान के बनाए हुए सिस्टम को मानते हैं। वैदिक कर्मकांड को मानना मतलब भगवान के बनाए हुए सिस्टम को मानते हैं, उस सिस्टम को मानने से उनके अंदर प्योरिफिकेशन होता है। और जब इस प्रकार के कर्मकांडी लोग जब धीरे शुद्धता को प्राप्त होते हैं तो फिर वो सकाम कर्मयोगी बनते हैं। कर्मकांड मतलब पहले वो अपने कर्मों को खुद के लिए करते हैं और फिर जब उनको समझ में आता है तो वो अपने कर्मों को भगवान को रिजल्ट उसको भगवान को उन कर्मों का रिजल्ट समर्पित करते हैं। और जब उससे एडवांस होते हैं तब वो निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं और उसके आगे वो फिर प्रेम भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो इस अध्याय में भगवान उस सबसे पहले 7 से लेकर 12 तक जो श्लोक हैं उन श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार के निष्काम कर्म योगी का क्या लक्षण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निष्काम कर्म योगी। ऐसा व्यक्ति जो कि अपने कर्म के फल को भोगने की इच्छा नहीं रखता है, क्योंकि जिसको भगवत ज्ञान प्राप्त होता है वो व्यक्ति समझ जाता है कि भौतिक संसार में वो खुशी नहीं रहेगा, इसलिए भौतिक संसार में वो जो कार्य करता है वो कार्य वो केवल शुद्धि के लिए करता है और अपने कार्यों का फल वो भगवान कृष्ण को देता है। जब कार्यों को वो केवल ड्यूटी के जैसा करता है और रिजल्ट भगवान को देता है तो वो संसार में अनअटैच तरीके से निवास करता है। तो उसके लक्षण यहाँ पे बताए जाते हैं, योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय। ऐसा व्यक्ति जो कर्म योग में लगा रहता है वो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन और इंद्रियों को वो जीत लेता है। जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी के लिए वो प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी भी नहीं बंधता है। जो कृष्ण भक्ति के मुक्ति के पथ पे है वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्रिय है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोचता है। ऐसे व्यक्ति हर व्यक्ति में कृष्ण को देखते हैं। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी जब डालते हैं तो सभी पत्तियों टहनियों में पानी फैल जाता है, उसी तरह से जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा करता है वो सभी की सेवा कृष्ण की सेवा के द्वारा वो सभी की सेवा करता है। और चूंकि सभी व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न होते हैं इसलिए उसकी चेतना शुद्ध रहती है। ऐसे व्यक्तियों के और लक्षण भगवान बता रहे हैं,
ऐसे व्यक्तियों के और लक्षण भगवान
नैव किंचित करो मेति,
नैव किंचित करो मेति
युक्तो मन्येत तत्वविद पश्यन् श्रण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् ससन् प्रलवन् विश्वजन ग्रहणन् उन्मिशन् निमिशन्नपि इन्द्रियान् इन्द्रियाधेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ऐसा व्यक्ति संसार में सारे कार्य करता है, देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंदर में हमेशा यही जानता है कि वो व्यक्ति वास्तव में कुछ नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे अलग है। जो जो इस प्रकार का व्यक्ति होता है निष्काम कर्म योगी, जो अपने कर्मों को कर रहा है और कर्मों के आउटपुट को भगवान को समर्पित कर रहा है और स्वयं उनको भोग करना नहीं चाहता है, वो व्यक्ति इस संसार में कुछ भी कार्य करता है परंतु कर्मों से बंधता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में लगी हुई हैं और वो भौतिक इंद्रियों से अलग है, वो भगवान का भक्त है। ये अवस्था बहुत उच्च अवस्था के बारे में बता रहे हैं, यद्यपि कर्मयोग निष्काम कर्मयोगी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं परंतु निष्काम कर्मयोग की एक उच्च अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति ये समझ जाता है कि वो इस शरीर से अलग है। उस अवस्था में वो जब कोई भी कार्य करता है तो उसको समझ में आता है कि वास्तविकता में मैं एक्टिव नहीं हूँ, आत्मा आत्मा एक्टिव नहीं है, शरीर की इंद्रियां और बाकी सभी वस्तुएं एक्टिव है, इस तरह से वो कार्य करता है। और ऐसे व्यक्ति को भगवान बता रहे हैं कि वो पाप के कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल का पत्र जल से स्पृश रहता है। जैसे कमल को जल में डालते हैं तो कमल का कोई कमल पे कोई भी पानी की बूंद नहीं आती है, जल से टच नहीं होता है, उसी तरीके से वो व्यक्ति जो अपने कर्म फलों को परमेश्वर को मतलब भगवान कृष्ण को जो समर्पित करता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा पाप कर्मों से अप्रभावित रहता है। और अगले दो श्लोकों में उसी का डिस्क्रिप्शन भगवान बता भी रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को कई बार जीवन मुक्त बोला जाता है। यहा यस्य हरिदास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। तो सामान्यतः कर्मयोगी जो इस प्रकार से भगवान को कर्म का समर्पण करता है उसके अंदर भक्ति योग का तत्व भी पाया जाता है, इसलिए उसका डिस्क्रिप्शन भक्ति योगी से भी मैच करता है। ये श्लोक जो है, इस संसार में जो भगवान हरि के दास होते हैं और जो अपने कर्म मन और शरीर से भगवान की सेवा करते हैं, वो संसार के अंदर रहते हुए भी संसार से मुक्त होते हैं, क्योंकि संसार की वस्तुओं का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए वो कार्य करते हैं। और ऐसा काम करने से व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होती है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, जब व्यक्ति कर्म के फल को त्याग देता है तो उसको शांति की प्राप्ति होती है। वास्तविकता में व्यक्ति क्यों अशांत होता है, क्योंकि वो अपने कर्म करता है और कर्म के फल भुगतने की इच्छा करता है, और जब उसको कर्म का फल नहीं मिलता है तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है। परंतु जो अपने कर्म को डिटैच तरीके से करता है, ड्यूटी के जैसा करता है, उस व्यक्ति के लिए फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। अगर वो कर्म करने में असफल भी होता है, कर्म का फल नहीं मिलता है, तब भी वो वास्तविकता में कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है। तो योग की जो सीढ़ी है जो हमने अभी 5 मिनट पहले डिस्कस की, उसमें हम देखते हैं कर्मकांड सबसे नीचे स्तर था। कर्मकांड सा वेदों में दिया होता है संसार के सभी लोगों को धर्म के स्तर पर लाने के लिए, और जब कोई व्यक्ति कर्मकांड करता है तो कम से कम वेदों की अथॉरिटी को स्वीकार करता है और धीरे धीरे वेदों को पढ़ते पढ़ते वो ज्ञान प्राप्त करता है और उपासना भक्ति को प्राप्त करता है। और वेदों जब यज्ञों का रिजल्ट आता है तो उसको शास्त्रों में विश्वास भी बढ़ता है, और वेदों का कर्मकांड को करते हुए ब्राह्मणों से एसोसिएट करता है जिससे उसको ऊपर का ज्ञान मिलता है। ऐसे ऐसे जब कर्मकांड करने वाला व्यक्ति ऊपर आता है तो सकाम कर्मयोगी बनता है, वो जान जाता है कि इस संसार का जो गोल है वो आध्यात्मिक गोल है, और भौतिक जीवन में वो फ्रस्ट्रेट होता है परंतु भौतिक इच्छाएं उसके अंदर होती हैं। तो कर्मों से वो भगवान को अर्पण करता है परंतु अंदर उसकी भौतिक इच्छाएं होती हैं। सामान्यतः जब हम भक्ति में आते हैं तो हम इसी अवस्था में होते हैं, हम अपने कर्मों के द्वारा भगवान की सेवा करना चाहते हैं परंतु हमारे अंदर भौतिक भोग करने की इच्छाएं होती हैं। निष्काम कर्मयोगी होता है वो भौतिक कर्मों के फल को छोड़ देता है परंतु कर्म से आसक्त होता है, वो कर्म को नहीं छोड़ पाता है। और जब वो आगे ज्ञान योगी बनता है तो कर्म और कर्म के
वो
फल दोनों
आगे
को छोड़
ज्ञान
देता
योगी
है।
बनता है तो कर्म और कर्म के
और
फल
जब
दोनों
ज्ञान
को छोड़
को
देता है।
ज्ञान योगी मतलब कर्म योग करते करते, कर्म योग में हमने देखा कि अटैचमेंट रहता है उसको कर्म
कर्म योग में हमने देखा
से,
कि
कर्म के
अटैचमेंट
फल से
रहता है
नहीं होता
उसको
है।
कर्म
धीरे धीरे
से,
जब वो एडवांस करता है
से
ज्ञान योग में जाता है तो कर्म
धीरे
और
धीरे
कर्म
वो
के फल
एडवांस करता
दोनों
है
से उसका
ज्ञान योग में
अटैचमेंट
जाता
खत्म
है,
हो जाता है।
कर्म और कर्म के फल
अज्ञान
दोनों
योग
से
में
उसका
जब
अटैचमेंट
ज्ञान योग में जब वो और आगे जाता है तो अष्टांग योग तक पहुंचता है, और अष्टांग योग में जब वो समाधि को प्राप्त करता है
और अष्टांग
तब
योग में जब वो
वो
समाधि को
भगवान को
प्राप्त करता
परमात्मा
है
के रूप में
तब वो
अपने हृदय
भगवान
में
को
देखता
परमात्मा
है,
के रूप में
और
अपने हृदय
उसके
में देखता
बाद
है। और
जब वो
उसके
आध्यात्मिक
बाद
गुरु को प्राप्त करता है तो भक्ति
जब वो
प्रोसेस को
आध्यात्मिक
पता
गुरु को
चलता है।
प्राप्त करता है
जैसे हम
तो
भगवद गीता में
उसके
देखेंगे
बाद
सातवें अध्याय में, बहुनाम
जैसे
जन्मनाम
हम
अन्ते
भगवद गीता
ज्ञानवान
में
माम
देखेंगे
प्रपद्यते थे।
बहुनाम
ज्ञान
जैसे
योगी कई
बहुनाम
जन्मों
जन्मों
के
के
बाद
बाद
भगवत
भगवद
भक्ति
भक्ति
को
को
प्राप्त
प्राप्त
करते
करते
हैं।
हैं।
तो
तो
ये
ये
योगा
योगा
लैडर
लैडर
है,
है,
कर्मकांड से
कर्मकांड
कर्मकांड
के
के
बाद
बाद
सकाम
सकाम
कर्म
कर्म
योगा,
योगा,
फिर
फिर
निष्काम
निष्काम
कर्म
कर्म
योगा,
योगा,
फिर
फिर
ज्ञान
ज्ञान
योगा,
योगा,
फिर
फिर अष्टांग
अष्टांग
योगा,
योगा,
फिर
फिर
भक्ति
भक्ति
योगा।
योगा। अष्टांग
ये
योगा
इस
इस
प्रकार
प्रकार
की
की
योग
योग
की
की
सीढ़ी
सीढ़ी
है,
है, ये इस प्रकार की
सामान्य सीढ़ी
योग की
जिससे सभी
सीढ़ी
लोग
योग
जाते
की
हैं।
सामान्य सीढ़ी
और
जिससे सभी लोग
फिर
जाते हैं।
भक्ति योग को क्या बोला जाता है? लिफ्ट बोला जाता है। भक्ति योगी
भक्ति
जो
योग
होते हैं
को
वो
क्या बोला
सामान्य
जाता है?
सीढ़ी से
लिफ्ट
नहीं
बोला
जाते
जाता है।
हैं,
भक्ति योग
उनको
को
लिफ्ट
लिफ्ट
बोले
बोला
जाते हैं,
जाता है।
एक्सप्रेस
भक्ति योग को क्या बोला जाता है?
एलिवेटर।
भक्ति योग को
जैसे
क्या
हमारा
बोला जाता है?
एक्सप्रेस वे
एक्सप्रेस वे
है
है
बड़ौदा अहमदाबाद, उसी
जैसे
तरीके
हमारा
से
एक्सप्रेस
जो
वे
भक्ति
है
योगी होते हैं
भक्ति
वो
योग
इस
को क्या
लंबी
बोला
प्रोसेस
जाता
से
है?
नहीं
भक्ति
जाते
योग
हैं,
को
उनके
क्या
लिए
बोला
छोटी
जाता
सी
है? वो इस
प्रोसेस होती
लंबी
है।
प्रोसेस से नहीं जाते हैं।
कर्मकांड की भी आवश्यकता नहीं होती
कर्म
है।
कांड की भी आवश्यकता नहीं
एनिमल
होती है।
लाइफ,
डायरेक्टली अगर
फिर
वो
शुद्ध भक्त का संग
एनिमल
मिलता
लाइफ
है तो
शुद्ध भक्त का
सकाम
संग
कर्म योग
मिलता
को
है
प्राप्त करते हैं।
तो
सकाम
सकाम
कर्म योग
संग
मतलब
के बाद
भौतिक
मतलब
इच्छाएं रहती हैं उनकी भक्ति करते
सकाम
हैं,
कर्म योग
और
मतलब
फिर
भौतिक
धीरे
इच्छाएं
धीरे
रहती हैं उनकी भक्ति
भौतिक
करते हैं।
कर्म के फलों को
धीरे
भोगने की
धीरे
इच्छा खत्म हो जाती है तो
कर्म
साधना
के
भक्ति
फलों
में
को
आते
भोगने
हैं,
की इच्छा
साधना
करते
भक्ति
हैं
के
तो
बाद
साधना
भाव भक्ति
भक्ति
में
में
आते
आते
हैं।
हैं
तो
साधना
भक्ति
भक्ति
के
के
जो
जो
प्रोसेस
प्रोसेस
है
है
बहुत
बहुत
फास्ट
फास्ट
है।
है।
सामान्य
सामान्य
योग
योग
पद्धति
पद्धति
से
से
जो
जो
प्योरिफिकेशन
प्योरिफिकेशन
होता
होता
है
है
कई
कई
जन्मों
जन्मों
में,
में,
भक्ति
भक्ति
से
से
वो
वो
प्योरिफिकेशन
प्योरिफिकेशन
कुछ
कुछ
सालों
सालों
में
में
अचीव
अचीव
हो
हो
सकता
सकता
है।
है।
इसलिए
इसलिए
भक्ति
भक्ति
को
को
एलिवेटर
एलिवेटर
प्रोसेस
प्रोसेस
बोला
बोला
गया
गया
है।
है।
जैसे
जैसे
किसी
किसी
हमें
हमें
100 फ्लोर
100 फ्लोर
की
की
बिल्डिंग
बिल्डिंग
में
में
जाना
जाना
है
है
तो
तो
अगर
अगर
हम
हम
सीढ़ियों
सीढ़ियों
से
से
जाएंगे
जाएंगे
तो
तो
घंटे
घंटे
भी
भी
लग
लग
सकते
सकते
हैं,
हैं,
परंतु
परंतु
एलिवेटर
एलिवेटर
हमें
हमें
2 मिनट
2 मिनट
में
में
पहुंचा
पहुंचा
देता
देता
है।
है।
तो
तो
इसलिए
इसलिए
एक
एक
सामान्य
सामान्य
योग
योग
पद्धति
पद्धति
जो
जो
भगवद
भगवद
गीता
गीता
में
में
दी
दी
है,
है,
भक्ति करने से वो योग पद्धति से हम एक्सप्रेस एलिवेटर योग पद्धति में आ जाते हैं भगवान की भक्ति
एक्सप्रेस
करने से।
एलिवेटर
इसलिए
योग पद्धति
प्रभुपाद
में
जी
आ
ने
जाते हैं भगवान
ये
की भक्ति
अध्याय
करने
जहाँ
से।
पे
इसलिए
कर्म
प्रभुपाद
योग
जी
के बारे
ने
में
ये
डिस्क्राइब किया है, यहाँ पे
अध्याय जहाँ
प्रभुपाद
पे
ने
कर्म
भक्ति
योग
का
के बारे
भी
में डिस्क्राइब किया
सिम्टम
है, यहाँ
दिया
पे
है,
प्रभुपाद ने
क्योंकि
भक्ति का
वास्तविकता
भी
में
सिम्टम दिया है।
कर्म योग की फास्ट प्रोसेस भक्ति योग
वास्तविकता में
कहलाता है।
कर्म योग की फास्ट प्रोसेस भक्ति योग कहलाता है।
तो जो व्यक्ति इस तरह से कर्म के फलों को त्याग करके
जो
भगवान को
व्यक्ति
समर्पित
इस तरह
करना
से
सीख
कर्म
जाता
के
है
फलों
उसको
को त्याग
शांति की
करके
प्राप्ति
भगवान को
होती है,
समर्पित करना सीख
क्योंकि
जाता है उसको शांति की प्राप्ति होती है।
फलों को त्याग करने से
फलों
व्यक्ति
को
पूर्ण
त्याग करने
शांति को
से
प्राप्त करता है,
व्यक्ति पूर्ण शांति को प्राप्त
नैष्ठिक की
करता है।
शांति को प्राप्त करता है। और
नैष्ठिक
जो
की
इस
शांति
प्रकार
को प्राप्त
से
करता है।
अयुक्त
और
है,
जो इस
भगवान से
प्रकार
युक्त
से
नहीं है,
अयुक्त है,
और जो
भगवान से
अपने
युक्त नहीं
श्रम
है,
को ही
अयुक्त है, और जो
मानता
अपने
है
श्रम
वो
को
व्यक्ति
ही
बंध
बंध
जाता
जाता
है।
है, वो व्यक्ति बंध जाता
जो
है।
व्यक्ति कर्म फलों को मुझे अर्पित करता
जो
है
व्यक्ति कर्म फलों
शांति को
को
प्राप्त
मुझे
करता है,
अर्पित
परंतु
करता
जो
है,
भगवान से युक्त नहीं
शांति को
है
प्राप्त करता है,
वो बंध
परंतु जो
जाता
भगवान
है।
से युक्त नहीं
इस
है
प्रकार से
वो बंध जाता है।
इस
इस प्रकार से
12 नंबर श्लोक में
इस
भगवान बताते हैं।
12 नंबर श्लोक में
इसके
भगवान
बाद
बताते
13 से 16
हैं।
तक जो श्लोक हैं
इसके बाद
उसमें
13 से
भगवान
16
कर्म
तक जो
योगी
श्लोक हैं
से ऊपर के स्टेज में
भगवान
बता रहे
कर्म
हैं,
योगी
कर्म योग से
से
ज्ञान
कर्म
योग में
योगी
कैसे
स्टेज
व्यक्ति
में
जाता
बताते
है।
हैं। कर्म योग से
कर्म
ज्ञान
योगी
योग
को
में
अगर
कैसे
भगवान
व्यक्ति जाता
विषय
है।
ज्ञान प्राप्त होता
कर्म
है
योगी को अगर
तो धीरे
भगवान
धीरे जब
विषय
उसको
से
ज्ञान
ज्ञान
की
की
प्राप्ति
प्राप्ति
जैसे
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 होती
होती
है
है
वैसे
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 वो
वो
ज्ञानी
ज्ञानी
में
में
ज्ञान
ज्ञान
योग
योग
की
की
स्थिति
स्थिति
में
में
जाता
जाता
है
है
और
और
ज्ञान
ज्ञान
को
को
प्राप्त
प्राप्त
होता
होता
है।
है।
तो उसकी स्थिति भगवान इन उस ज्ञान को भगवान इन 4 श्लोकों में डिस्क्राइब कर रहे
उस
हैं।
ज्ञान को भगवान इन 4 श्लोकों में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ज्ञान को भगवान इन 4 श्लोकों
आप में
में
से कुछ लोगों
डिस्क्राइब
का
कर
मैसेज
रहे
आ
हैं।
रहा है कि इको बहुत आ रहा
आप में
है,
से कुछ लोगों का
जस्ट
मैसेज
जस्ट
आ
अ
रहा है
मिनट
कि
में कुछ
इको
सेटिंग
बहुत
में
आ रहा है। जस्ट अ
एक
मिनट
बार
कुछ
देखता
सेटिंग
हूँ,
में
उसमें कुछ चेंज हो सकता है।
एक बार देखता।
आई होप अभी शायद उतना समस्या नहीं आनी चाहिए। आई होप अभी शायद उतना समस्या नहीं आनी चाहिए इको का। तो इसके बाद तेरह से सोलह नंबर श्लोक में भगवान ज्ञान के बारे में बताते हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति निष्काम कर्म योगी जो है वो ज्ञान योग की तरफ जाता है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में करता है और मन से समस्त कर्मों का त्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। अभी ये वास्तविकता में वो ज्ञान क्या है जो निष्काम कर्म योग को ज्ञान योग की तरफ ले जाता है? वो ज्ञान है ईश्वर, जीव और प्रकृति। जब व्यक्ति को ईश्वर जीव प्रकृति तीनों का ज्ञान होता है तो व्यक्ति धीरे धीरे, और ऐसे व्यक्ति के लिए फिर इस संसार में न कर्तृत्व न कर्माणि, उसको करने के लिए कोई कार्य नहीं होता है, और ना तो वो कर्म करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है ना कर्मफल की रचना करता है। इन द सेंस वो आत्मा के स्तर पे आता है, क्योंकि आत्मा कभी भी कर्म नहीं करता है और कर्म का सृजन भी नहीं करता है, लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित भी नहीं करता है। ये तीनों चीज़ें प्रकृति के गुणों के द्वारा होती हैं। जैसे जो व्यक्ति डिटैचमेंट वैराग्य के साथ कार्य करता है और उसको आत्मा भौतिक प्रकृति और परमात्मा के बीच का संबंध पता रहता है, तो कई बार लोग सोचते हैं, जैसे मेरे पास एक प्रश्न आया था कि अगर आत्मा को क्यों दुख मिलता है अगर आत्मा का कुछ दोष नहीं है, तो आत्मा का केवल ये दोष है कि आत्मा को एक आत्मा इच्छा करती है, बाकी सारा कार्य प्रकृति के तीन गुण करते हैं और परमात्मा की आज्ञा के अनुसार करते हैं। तो ये तथ्य हमें समझना होगा कि आत्मा यद्यपि इस शरीर में स्थित है, आत्मा कोई कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं होती, परंतु उस भोग की इच्छा जो है वो आत्मा के द्वारा आती है, उस भोग की इच्छा के बाद प्रकृति के गुणों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। और प्रकृति के गुण बिना भगवान की परमिशन से कार्य नहीं कर सकते हैं, तो प्रकृति के गुण और परमात्मा मिलकर आत्मा की जो भोग करने की इच्छा है उसको पूरा करते हैं। इस तरह से समझा जा सकता है। इसलिए भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं, 15 नंबर श्लोक में, नादत्ते कस्यचित् पापम, आप जो पाप करते हैं उसका मुझे कोई, परमात्मा और उसके कोई पापों को ग्रहण नहीं करता है। जैसे कोई व्यक्ति लोगों पर आरोप लगाते हैं कि कोई कोई व्यक्ति जो है वो अलग अलग तरीके से बोलते हैं कि भगवान की इच्छा थी, भगवान हमसे पाप करा रहे हैं, भगवान इसलिए उनका उत्तर दे रहे हैं कि मैं कोई पाप नहीं कराता हूँ, मैं पापों को ग्रहण भी नहीं करता हूँ, पाप करने की इच्छा तुम्हारी होती है और उस इच्छा को केवल मैं परमिट करता हूँ प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर। और परमेश्वर जो कि असीम ज्ञान धन बल यश के से युक्त हैं, वो हमेशा पाप पुण्य से अविचलित रहते हैं, वो किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न नहीं करते, जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की परिस्थिति की कामना करता है, जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति भगवान के द्वारा ही की जा सकती है, इसलिए जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त होता है और भगवान उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति का ज्ञान ढक जाता है। तो अभी हमें समझ में आया है कि ये ज्ञान जो है ईश्वर जीव प्रकृति का ज्ञान, इस ज्ञान को समझने से जो कर्म योगी है वो धीरे धीरे ज्ञान योग में आता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, और जब मैं गलत इच्छाएं करता हूँ, भगवान से अलग होकर इंद्रिय भोग करने की इच्छाएं करता हूँ, तब प्रकृति के तीन गुण मुझे मेरी इच्छाओं के आधार पर मुझे कार्य करते हैं, मेरे साथ मुझे उसका फल देते हैं, पर वास्तविकता में मैं इस फल से अचेत हूँ क्योंकि मैं आत्मा हूँ। तो इस तरह से वो धीरे धीरे कर्म से डिटैच हो जाता है और ज्ञान की तरफ आ जाता है, तो वो कर्म योग से एलिवेट होके ज्ञान योग में पहुंच जाता है। और 16 अध्याय तक भगवान इसी को, 16वें श्लोक तक भगवान इसी तरह से बता रहे हैं, जब कोई इस ज्ञान को जान जाता है तो उससे अविद्या का विनाश हो जाता है, जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं, इस प्रकार से बताते हैं। फिर 17 श्लोक से लेके ऑलमोस्ट अध्याय के अंत तक, मतलब 26 श्लोक तक ऐसे ज्ञान योगी का लक्षण बता रहे हैं। तो अभी तक हमने इसमें 4 सेक्शन देखे। पहला सेक्शन अर्जुन का प्रश्न था कि कर्म योग और संन्यास में क्या अच्छा होता है, और भगवान 6 श्लोकों में, अगले 5 श्लोकों में उसका उत्तर देते हैं कि कर्म योग ज़्यादा अच्छा है कर्म संन्यास से। उसके बाद भगवान ऐसे कर्म योगी का लक्षण बताते हैं, निष्काम कर्म योगी जो कि कर्म के फलों से डिटैच होता है, अगले 6 श्लोकों में उसका लक्षण बताते हैं। उसके बाद एक प्रक्रिया बताते हैं जिससे निष्काम कर्म योगी प्रमोट होकर ज्ञान योग तक पहुँच सकता है, वो प्रक्रिया है ईश्वर जीव और प्रकृति के गुणों का ज्ञान प्राप्त करना। जब ये ज्ञान व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसको समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ, और किस प्रकार से मेरे भोगने की इच्छाओं के कारण प्रकृति के गुण और परमात्मा मेरी इच्छाओं को पूरा करते हैं, जिससे मैं इस संसार में फंसा रहता हूँ। तो धीरे धीरे वो कर्म से भी बाहर आ जाता है, ध्यान ज्ञानी जो है वो कर्म और कर्म के फल दोनों को छोड़ देता है। जब उसको पता चलता है कि इस प्रकार से मैं फंसा हुआ हूँ, तो उसको एलिवेट होके वो ज्ञान के स्तर में पहुंच जाता है और परमात्मा का आश्रय लेता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। फिर अगले 9 श्लोकों में भगवान अभी 17 श्लोक से लेकर 26 श्लोक तक उस ज्ञानी का लक्षण बताते हैं, ज्ञानी का विजन बताते हैं। अभी हमने निष्काम कर्म योगी का डिस्क्रिप्शन देखा था, फिर तो निष्काम कर्म योगी ने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान ही स्टेज में पहुंचता है, और उस ज्ञानी का विजन भगवान अभी ऑलमोस्ट 9-10 श्लोकों में बता रहे हैं। वो ज्ञानी का क्या होता है, तद्बुद्धयस् तदात्मानस् तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त पुण्यावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषः, 17 नंबर श्लोक में। ऐसा व्यक्ति, उसने अपनी बुद्धि को, अपनी मन को, अपनी श्रद्धा को और अपनी शरण को भगवान को, भगवान में स्थिर कर दिया है। तो जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तब इस शरणागति के कारण वो व्यक्ति पूरी तरह से कल्मष से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पे आगे जाता है, मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो ये 4 वस्तुएं व्यक्ति को भगवान को समर्पित करना चाहिए, बुद्धयस, बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण, ये सब कुछ उसको भगवान के चरणों में देना चाहिए। तब वो इस शरणागति के कारण कल्मष से मुक्त होके मुक्ति के पथ पे जाता है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इस श्लोक को याद करना चाहिए, इस अध्याय का इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, कि हम क्या क्या वस्तुएं भगवान को शरण में दे सकते हैं, बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण, ये 4 वस्तुएं भगवान को हमें प्रदान करना है, समर्पित करना है, जिससे कि हम कल्मष से मुक्त हो जाते हैं। बुद्धि को कैसे समर्पित करते हैं, बुद्धि को समर्पित करते हैं भगवत तत्व के बारे में जान के, मन को समर्पित करते हैं, मन में भगवान की वाणी को स्मरण करना, भगवान के नाम को स्मरण करना और इसके द्वारा मन को शुद्धि प्राप्त करना, और श्रद्धा, श्रद्धा मतलब भगवान की लीलाओं में श्रद्धा होना, भगवान के शास्त्रों में श्रद्धा होना, उस श्रद्धा के आधार पर अपने जीवन जीने का प्रयास करना, और शरण मतलब भगवान, जो भगवान करने के लिए बोलते हैं वो करना, और जो भगवान नहीं करने के लिए बोलते हैं वो नहीं करना, भगवान के लिए समय शरणागति की प्राप्ति करना। ऐसा कोई करता है तो मुक्ति के पथ पर आगे जाता है। इसके बाद अगले श्लोक में उस ज्ञानी के बारे में ये बताया जाता है, ये भगवद्गीता का फेमस श्लोक है, आप सभी को याद भी होगा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। जो व्यक्ति इस प्रकार के ज्ञान से युक्त होता है उसके अंदर विद्या और विनम्रता पाई जाती है और वो समदर्शी होता है। ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल, इन सभी को वो समान स्तर पर देखता है। समान स्तर पर देखने का ये मतलब नहीं है कि सभी को शारीरिक रूप से समान देखता है, शारीरिक रूप से ऑब्वियसली वो लोग समान नहीं है। इसमें समदर्शी का मतलब सबके अंदर वो आत्मा देखता है, क्योंकि इन सभी के अंदर आत्मा है, भले ऊपर का शरीर अलग अलग है परंतु इन सभी के अंदर आत्मा उपस्थित है, जो कि आत्मा भगवान से संबंधित है। विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अलग, शरीर के जो डिफरेंस है उनका ज्यादा मतलब नहीं होता है, उसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में है। तो जब व्यक्ति आत्मा और परमात्मा का दर्शन करता है तो वो समझ जाता है, सभी को समान दृष्टि से देखता है। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं, यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते, शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं, परंतु आत्मा और परमात्मा की यह समानता उनकी मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं है। परमात्मा सभी शरीर में है, इसलिए जो परमात्मा को सभी शरीरों में देख पाते हैं वो सभी को समान तरीके से व्यवहार कर पाते हैं। ये उस ज्ञानी का विजन होता है, जो कि सभी के अंदर आत्मा और परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। और जब जो व्यक्ति इस तरह से स्थित होता है, उसके आगे क्या होता है, जन्म मृत्यु के बंधनों को उसने जीत लिया है, और वो हमेशा ब्रह्म में स्थित होते हैं, आध्यात्मिक सत्य में स्थित होते हैं, और जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट चुके होते हैं। और उसका आगे और भगवान लक्षण बता रहे हैं कि न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। ऐसा व्यक्ति ना तो प्रिय वस्तु को पाके खुशी होता है, ना अप्रिय को वस्तु को पाके विचलित होता है, स्थिर बुद्धि होता है और मोह रहित होता है, और भगवत विद्या को जानने वाला है, ब्रह्म में स्थित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है कि सुखी वस्तुओं को, अच्छी वस्तुओं को पाके खुश नहीं होना, और अप्रिय वस्तुओं को पाके विचलित नहीं होना, ये स्थिर बुद्धि का लक्षण है। दूसरे अध्याय में ही भगवान इसका डिस्क्राइब कर रहे हैं, और इसमें ज्ञानी के लक्षण में भी भगवान डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि वो जानता है, ज्ञानी जो कि आत्मा को रियलाइज कर चुका है, वो जानता है कि ये चाहे अच्छी वस्तु हो चाहे खराब वस्तु हो, दोनों वस्तुएं शरीर से संबंधित हैं, और जबकि मैं शरीर नहीं हूँ, तो इस ज्ञान के कारण वो दोनों में स्थिर रहता है, मैं भगवान का एक अंश हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इसके कारण वो हमेशा स्थिर रहता है अपनी चेतना में, और किसी भी वस्तु को इस प्रकार से हर्षित या दुखी नहीं होता है। और भौतिक इंद्रिय के लिए उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है, और सदैव समाधि में रह के उसको आत्मा का आनंद प्राप्त होता है, इसलिए भौतिक आनंद के लिए वो ज्यादा सोचता नहीं है। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम्। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। इसमें प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट कर रहे हैं, यद अवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे। जब से मैं कृष्ण की दिव्य भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति का आध्यात्म में इतना ज़्यादा टेस्ट होता है कि जब भी वो भौतिक भोग के बारे में सोचता है तो उसको बहुत खराब लगता है, और इसमें लिखा है वो अपने थूक देता है ऐसे विचार को। श्री प्रभुपाद एक लेक्चर में जब बता रहे थे कि किस प्रकार से भोगी व्यक्ति काम सुख को इतना ऊपर मानते हैं, तो प्रभुपाद भी इस तरह से बताते हैं कि आध्यात्मवादी इस भौतिक सुख को थूक थूक के समान फेंक देता है, इसकी कोई केयर नहीं करता है। तो ये उस ज्ञानी का लक्षण है। आगे बताया जा रहा है, आगे 3-4 श्लोकों में बताते हैं कि वो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि इस संसार में जब भी इंद्रिय और इंद्रिय के विषय एक दूसरे से मिलते हैं तो दुख का जन्म होता है। ये ही समस्पर्श जब होगा दुख यौनय एवते। सामान्य लोग क्या समझते हैं, इंद्रियों और इंद्रिय के विषय एक दूसरे से मिलते हैं तो सुख होता है, सुख प्राप्त होता है, परंतु ज्ञानी को ये पता होता है कि इंद्रियों और इंद्रियों के विषय के मिलने से दुख यौनय दुख का जन्म होता है। कैसे दुख का जन्म होता है, क्योंकि इंद्रिय इंद्रिय भोग के मिलने से अगर हमें कुछ खुशी मिलती है तो उसका आदि मतलब प्रारंभ होता है, उसका अंत भी होता है, आदि अंतवंत, तो वो टेम्प्रेरी होता है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं इस टेम्प्रेरी चीज में ज्यादा आसक्त नहीं होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, इसलिए चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जब भी इंद्रिय और इंद्रिय भोग को एक दूसरे से मिलाया जाएगा तो किसका जन्म होगा, सुख का जन्म नहीं होगा, दुख का जन्म होगा। इस प्रकार की सोच ज्ञान की सोच कहलाती है। और उस दुख को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंद्रिय भोग को मिलाते हैं, जैसे हमारी जीभ है, जीभ को अच्छा खाने की इच्छा है, उसको गुलाब जामुन से मिलाया, तो सामान्य व्यक्ति को तो सुख लगता है कि गुलाब जामुन जीभ से टच हुआ तो कितना अच्छा टेस्ट आता है, परंतु इस टेस्ट को हमें देखना चाहिए कि कितने समय तक ये टेस्ट आ सकता है और कितना हम इंजॉय कर सकते हैं, कितने गुलाब जामुन खाने तक जीभ हमारी संतुष्ट रहेगी। 1, 2, 3, 4, 10 गुलाब जामुन कोई खा सकता है? ठीक है, मान लो कोई बहुत बहुत खाने वाला है, 10 भी खा सकता है, क्या 50 गुलाब जामुन खा सकता है? तो उस एंजॉयमेंट की लिमिट है, प्रारंभ होता है, चालू होता है, और एक लिमिट से ज़्यादा हम भोग नहीं भी कर सकते हैं। और ज्ञानी पुरुष को ये चीज़ पता होता है कि इन भोगों का आदि अंत होता है, क्योंकि ये शरीर से संबंधित है, जबकि उसका जो उसके पास जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो शरीर से संबंधित नहीं, इसलिए उसका कभी विनाश नहीं होता है। तो जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है वो इन भोगों को दुख के समान मानता है। इसलिए जो योगी या दिव्य ज्ञानी है वो इंद्रिय सुख की तरफ आकृष्ट नहीं होता और निरंतर भव रोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उतने ही अधिक उसको भौतिक दुख मिलते हैं। और इस शरीर को त्यागने के पूर्व यदि कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। भगवान आगे बता रहे हैं उसी ज्ञानी के विजन में कि जो शरीर के जो वेग होते हैं, शरीर में 6 वेग मेनली वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ये 6 प्रकार के वेग शरीर में पाए जाते हैं। वेग मतलब फोर्सेस, जो हमें फोर्स करते हैं कुछ कार्य करने के लिए। तो वाचो वेगम मतलब बोलने की इच्छा, सभी लोग बोलना चाहते हैं हर समय। मनसा वेगम मन का वेग, क्रोध वेगम क्रोध का वेग, उदर का वेगम उदर वेग मतलब उदर का वेग मतलब जब पेट में जब भूख लगती है तो हम खाना चाहते हैं, उदर वेग। जिह्वा वेग जीभ में ज़्यादा अच्छा खाने की इच्छा। उपस्थ वेग मतलब जननांगों को उपयोग करने की इच्छा। जो इन 6 प्रकार के वेगों को कंट्रोल कर सकता है उसको गोस्वामी बोला जाता है। और ऐसा गोस्वामी हमेशा नियंत्रित जीवन जीता है और इंद्रियों को वेगों को छोड़ देता है। और व्यक्ति को चाहिए कि इस शरीर को छोड़ने के पहले व्यक्ति इन वेगों को वश में करने का नियंत्रण करें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इनको वश में नहीं करता है और काम और क्रोध में लगा रहता है तो वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। इसलिए योगी का कर्तव्य है कि वो इच्छा और क्रोध को वश में करके इन 6 वेगों को नियंत्रित करें, और ऐसा व्यक्ति फिर आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करता है। उसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है और परब्रह्म में वो मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी है और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। जैसे बहुत अच्छा श्लोक इसमें भागवत का श्लोक बताया गया है, भागवत चतुर्थ स्कंद का, यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथित उद्ग्रहयन्ति संतः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोपि वृद्धस्तोतो गणास्तमरण भज वासुदेवम। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो, बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके आनंद में लीन होते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि संसार में बड़े बड़े साधु पुरुष हैं वो भी इंद्रियों के वेग को नहीं संभाल पाते हैं, परंतु कोई व्यक्ति अगर भगवान की शरण प्राप्त करता है तो सकाम कर्मों का जो तीव्र वेग है उसको वो नष्ट कर देता है, और भगवान की दिव्य सेवा के कारण वो इसको नष्ट कर देता है। उसके बाद वो भगवान के दिव्य आनंद में डूबता है। सामान्यतः संसार में भोग करने की इच्छा इतनी तेज होती है कि ऋषि मुनि तक बहुत तपस्या करते हैं, बहुत सालों तक तपस्या करते हैं, तब भी अपनी इच्छा को वश में नहीं कर पाते हैं। परंतु जो लगातार कृष्ण भक्ति करता है वो धीरे धीरे इच्छाओं को कंट्रोल करके अपने जीवन को सफल बनाता है। तो यहाँ तक भगवान मेनली इस अध्याय का मेन टाइटल यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। आगे के जो 3 श्लोक हैं भगवान अगले अध्याय को 27 और 28 अगले 2 श्लोक को में भगवान आगे जो बताने वाले हैं अष्टांग योग के बारे में, ध्यान योग के बारे में जो बताने वाले हैं भगवान, वो क्योंकि कर्म के बाद ज्ञान आने के बाद अष्टांग योग के बारे में भगवान आगे बताने वाले हैं, तो उसको इंट्रोडक्शन देने के लिए भगवान 2 श्लोक बताते हैं, 27वां श्लोक और 28वां श्लोक। 27वें श्लोक में भगवान बताते हैं, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय और क्रोध से मुक्त रहता है। तो ये भगवान बता रहे हैं अष्टांग योग की पद्धति, अपनी दोनों आँखों को भौहों के मध्य में स्थिर करना चाहिए और वायु प्राण अपान वायु को ऊपर नीचे छोड़ के नियंत्रित करना चाहिए, इस तरह से मन बुद्धि को नियंत्रित करके मोक्ष को लक्ष्य बनाना चाहिए। तो ये भगवान इंट्रोडक्शन बता रहे हैं अष्टांग योग के बारे में, जो कि अगले अध्याय में जब बहुत डिटेल में बताया जाएगा मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। अष्टांग योग की 8 विधियां हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इसकी विस्तृत व्याख्या 6वें अध्याय में की जाएगी। इस अध्याय के अंत में इसका प्रारंभिक विवेचन दिया गया है और अंतिम श्लोक इम्पॉर्टेंट है, अंतिम श्लोक याद करने का भी है। इसमें हम इस अध्याय में हमने दो श्लोक अभी तक देखे जो याद करना है, 17, 18 और ये 29, 17, 18 और 29। भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। इस श्लोक को भगवद गीता का पीस फॉर्मूला बोला जाता है कि कौन सा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जो मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर और समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानता है, वो मेरे भावनामृत में पूर्ण व्यक्ति भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। दैट मीन्स व्यक्ति कौन सा व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है, जो कि ये समझे कि सारे यज्ञ और सारी तपस्याओं के भोक्ता भगवान हैं, सर्वलोक महेश्वरम सारे लोकों के स्वामी भी भगवान हैं और हमारे सबसे अच्छे मित्र भी भगवान हैं। इससे कैसे शांति मिल सकती है? जैसे हमें बताया जाए कि कोई कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि सभी लोग उसको सलाम करते हैं, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि सब उसको जाके टैक्स वसूल टैक्स उसको देते हैं, जमा करते हैं रेगुलरली, और वो चाहे तो ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो इस देश का राजा है, और लास्ट में बताया जाए कि वो हमारा बहुत अच्छा मित्र है, सुहृदम, हमारे हृदय के बहुत पास है, तो ये जान के व्यक्ति अपने आप शांत हो जाता है। शांत मतलब सुख और शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि उसको समझता है कि भगवान जो है वो संसार के मालिक हैं, सारे यज्ञ तपों तप यज्ञ और तपों के रिजल्ट भी हैं, और साथ साथ मेरे सबसे अच्छे मित्र भी हैं। जब उसको ये विचार आता है तो उसके हृदय में परम शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए केवल ये अगर व्यक्ति संसार में सभी लोग इस चीज़ को जान लें तो इस संसार में वो शांति लाभ कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित करे, क्योंकि वो ही लोकों और उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। बड़े से बड़े देवता शिव और ब्रह्मा भी उनसे महान नहीं है। श्वेताश्वत उपनिषद में बताया गया है, तम ईश्वरानाम परमम महेश्वरम, तम देवतानाम परमम च दैवतम, पतिम पतिनाम परमम परस्तात। इस तरह से बताया जाता है कि सारे देवताओं में सबसे बड़े देवता भगवान हैं, सारे ईश्वरों में सबसे बड़े ईश्वर भगवान हैं, और माया के स्वामी हैं, सारे जीवों के भी भगवान स्वामी हैं, और हम उनके सेवक हैं। वास्तविकता में जो सेवक होता है उसको ज़्यादा सुख मिलता है, क्योंकि उसको कुछ मालिक के जैसे ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। मालिक सब कुछ मैनेजमेंट करते हैं, सारा हेडेक लेते हैं, और सेवक खुश रहता है केवल सेवा करने में। तो पूरे संसार के लोग मालिक बनना चाहते हैं, परंतु वास्तविकता में सेवक बनने में ज़्यादा खुशी है। जैसे भगवान के सेवक सेवा करो तो भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं, परंतु अगर खुद मालिक बनने की कोशिश करेंगे तो वो सब हमें खुद करना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि मान लो किसी छोटे बच्चे को उसके माता पिता के पास जाना है, उसके माता पिता अमेरिका में हैं, वो बच्चा अमेरिका नहीं जा पाया, तो एक तरीका तो है कि बच्चा कोशिश करे अपना पासपोर्ट बनवाए, वीज़ा बनवाए, और फिर कैसे भी ढूंढ ढूंढ के यहाँ वहाँ परेशान होके अमेरिका तक जाए, फ्लाइट के टिकट के लिए पैसा अरेंज करे। ये सब बहुत कठिन होगा एक बच्चे के लिए, परंतु उसके लिए बहुत आसान क्या है कि एक बार फ़ोन करे, वो फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, वो माता पिता से बोले कि मम्मी पापा मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे आके लेके जाइए, और जिद करने लगे कि नहीं मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, मुझे लेके जाइए, तो माता पिता वहाँ से टिकट करा के लाएंगे, इसका वीज़ा कराएंगे, इसका टिकट कराएंगे, और खुद अपनी गोदी में बिठा के लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से स्वयं वीज़ा कराना और अमेरिका तक जाना बाकी दूसरी पद्धति कहलाते हैं, अष्टांग योग, ध्यान योग। परंतु जैसे छोटे बच्चे के जैसे रो के भगवान के पास बोलना कि भगवान मैं आपके पास आना चाहता हूँ, तो भगवान स्वयं अरेंजमेंट करते हैं, तो वो भक्ति योग की पद्धति है। इसलिए जब व्यक्ति पता चलता है कि वो स्वामी नहीं सेवक है, तो उसको शांति की प्राप्ति होती है। शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है, और माया पे प्रभुत्व जमाने की इच्छा से वह माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का कारण है। जब किंतु कृष्ण भावना में तो उसे पदार्थ की परिधि में स्थित रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है। जो मनुष्य जितना भी प्रगत है उतना पदार्थ के बंधन से मुक्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयं एव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति होती है, किंतु भक्ति योग में तो प्रस्तावना के प्रारंभ में ही व्यक्ति को शांति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भक्ति योग जीवन की परम सिद्धि कहलाता है। तो यहाँ पे अध्याय पूरा होता है। ये अध्याय छोटा अध्याय है, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, क्योंकि इसमें भगवान ने कर्म योग को कर्म संन्यास से ऊपर बताया है, साथ में निष्काम कर्मयोगी का डिस्क्रिप्शन, निष्काम कर्मयोगी को जो ज्ञान मिलता है जिसके द्वारा वो ज्ञान योगी बनता है वो बताया है, और फिर ज्ञान योगी का डिस्क्रिप्शन बताया है, उसके बाद अष्टांग योग का इंट्रोडक्शन दिया है, और साथ साथ फिर पीस फॉर्मूला भगवद गीता का शांति सूत्र बताया है। तो अध्याय हालांकि बहुत छोटा है, 29 श्लोकों का, परंतु भगवान इसमें बहुत सिस्टमेटिक ज्ञान बता रहे हैं। और साथ साथ इसमें हमने आज योगा लैडर भी डिस्कस किया, योग की सीढ़ियाँ, सबसे नीचे एनिमल जीवन, उसके बाद कर्मकांड, उसके बाद सकाम कर्म योग, उसके बाद निष्काम कर्म योग, उसके बाद ज्ञान योग, और ज्ञान योग के बाद अष्टांग योग, अष्टांग योग के बाद भक्ति योग, ये हमने डिस्कस किया। कल हम इसके आगे अध्याय 6 डिस्कस करेंगे, विशेष रूप से जो अष्टांग योग के लिए दिया गया है, और उस अध्याय 6 के अंत में भगवान बताते हैं कि भक्ति योग इन सभी से ऊपर होता है, और फिर उसके बाद अगले 6 अध्याय जो हैं 7 से लेकर 12 तक, उसमें भगवान भक्ति योग को बहुत डिटेल में बताते हैं। आप सभी का धन्यवाद इस इस कोर्स में भाग लेने के लिए। आई होप हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपको यूजफुल लग रहा है, और जब जो अध्याय हम डिस्कस करते हैं उसको फिर से पढ़ने की कोशिश किया करिए जब आपको समय मिलता है, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। और ये वीडियो इस चैनल पे हमेशा रहेंगे, जब भी आपको उस अध्याय को रेफर करना है तो आप भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपको उस अध्याय समझने में आसानी होगी। और चूंकि 1 घंटे में डिस्कस करने में हम सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो जाते हैं, परंतु जब आप इस अध्याय के अनुवाद तात्पर्य को पढ़ेंगे तो आसानी से आप उनको समझ सकते हैं। और अगर किसी को कोई प्रश्न है तो ये इन वीडियोस के नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या हमें आप मैसेज कर सकते हैं, अगर किसी के पास मेरा मोबाइल नंबर है, या इस ग्रुप में आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपको क्या प्रश्न है। अगर प्रश्न मेरे पास तक पहुँचेंगे तो उनका उत्तर आपको श्योरली हम देने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय, जगद गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।